नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी, ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी, धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया, ओ धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया, जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, पुत्र वो कहलाए, वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र वो कहलाए, प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, करो इनका पालन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप आज के अध्ययन के द्वारा भी अपने जीवन में अवश्य ही आशीष पाएंगे। तो आइए हम आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, आपके वचनों में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो दूर दराज में रहकर आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें अपने शांति और छुटकारा दें, ताकि वे भी आप में स्वस्थ और भले चंगे पाए जाएं। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबों को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से इब्रानी की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। दूसरे शब्दों में हम सावधान रहें कि अपने जीवन की नींव उचित डालें। क्या हम रेत पर निर्माण कर रहे हैं, या हम प्रभु यीशु रूपी चट्टान पर निर्माण कर रहे हैं, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। परमेश्वर स्थिर है, उसका वचन अटल है, और वह अनंत राज जिसके नागरिक विश्वासी हैं, वह स्थिर रहेगा। जी हाँ, आइए हम आगे देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, हम विश्वासी स्वर्गिक राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते हमें स्मरण रखना है कि हमें यहाँ परमेश्वर की सेवा करना है। हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? हमें उसकी सेवा करने में ग्रहण योग्य ठहरना है। हम ग्रहण योग्य सेवा कैसे करें? भक्ति और भय सहित। मेरे मित्रों, मसीही विश्वास कलीसिया नामक खेल नहीं है, और न ही यह एक स्वांगपूर्ण पवित्र व्यवहार है। यह प्रभु यीशु के साथ जीवंत, आवश्यक और सच्चा संबंध है, जिसके कारण आपका जीवन बदल जाता है और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 29 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे मित्रों, आप चाहें तो इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, परंतु यह परमेश्वर के वचन में है। यह एक पावन चेतावनी है कि परमेश्वर की सेवा के लिए आपको अनुग्रह प्राप्त है। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ न करें। आप यह न सोचें कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करके आप बच जाएंगे। मुझसे एक बार एक महिला ने आग्रह किया कि उसके पति से भेंट करूं। वह एक अति प्रिय दंपत्ति था, परंतु उसका पति रोगशाया में था। मैंने उसे सुसमाचार सुनाया तो उसने सम्मान पूर्वक सुनकर कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसी समय प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, परंतु मैंने वर्षों परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है, अतः मैं नहीं जानता कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है कि मैं मन से कह रहा हूं या व्यर्थ में। अतः मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ खेल न करें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप परमेश्वर के साथ हैं या नहीं। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परंतु वह अनुग्रहकारी, महिमामय और एक महान उद्धार करता है। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि इब्रानियों की पत्री का अध्याय 11 विश्वास का अध्याय है और 12 आशा का अध्याय है, तथा अब आता है अध्याय 13 जो प्रेम का अध्याय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 13 से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। इस संपूर्ण भाग की एक और प्रस्तावित रूपरेखा है अध्याय 10 मसीही सौभाग्य, अध्याय 11 मसीही सामर्थ्य, अध्याय 12 मसीही उन्नति और अध्याय 13 मसीही आचरण। यह रूपरेखा अधिक अच्छी तो नहीं है, परंतु अध्याय 13 के लिए निश्चय ही अच्छी है, क्योंकि इस अध्याय में हम मसीही आचरण को देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ आगे बढ़िए। विश्वासी का गुप्त जीवन, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। मेरे मित्रों, यद्यपि लेखक इब्रानी विश्वासियों को यह पत्र लिख रहा है, इस पत्र की विषय वस्तु हमारे लिए भी प्रासंगिक है। यहूदी और अन्य जाति एक ही देह में जोड़े गए हैं, विश्वासियों की देह, और हम सबको जोड़ने वाला कारक है भाईचारे का प्रेम। हमारा परस्पर प्रेम करना इसलिए नहीं कि हम आपस में भाई हैं, परंतु हमें इसलिए प्रेम करना है कि हम भाई बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो स्वाभाविक है कि आप मेरे भाई हैं। मुझे कुछ ऐसे पत्र भी मिलते हैं जिनमें श्रोता लिखते हैं, मैं आपके रेडियो संदेश सुनता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विश्वासी हूं और आपसे प्रेम करता हूं। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। हम परमेश्वर की संतान के लिए क्या अंतर है? उसने हमें नया मन दिया है और धोकर बर्फ के समान सफेद कर दिया है। तो हम जो परमेश्वर के परिवार में हैं, सब भाई भाई हैं, और हमें एक दूसरे से प्रेम करना आवश्यक है। मसीही जीवन एक त्रिकोण है। जी हाँ, विश्वास, प्रेम जो परमेश्वर के साथ में है, मैं और प्रेम, और परमेश्वर और प्रेम, और तब हम देखते हैं कि प्रेम अन्य के साथ में, परमेश्वर के साथ में और अन्यों के साथ में। मसीही जीवन परमेश्वर की ओर विश्वास और प्रेम का जीवन है, तथा अन्यों की ओर प्रेम है, भाईचारे की प्रीति में बने रहें। मेरे प्रियो, अब हम आगे देखते हैं कि यह परदेशियों के प्रति प्रेम है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यहाँ स्वर्गदूत से अभिप्राय है महामानव या परमेश्वर के संदेश वाहक। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 2 और अध्याय 3 में एशिया माइनर की 7 कलिसियाओं के अगुओं के लिए यही शब्द काम में लिया गया है। मेरा मानना है कि मानवीय संदेश वाहकों को यहां स्वर्गदूत कहा गया है, अर्थात कलिसियाओं के शिक्षक या अगुए। कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ये लोग थे अब्राहम, याकूब, जबकि याकूब से अधिक समय लड़ने में लगाया था। यहोशू ने भी स्वर्गदूत की सेवा की थी। मेरे मित्रों, इस पत्री में यहाँ मुख्य विचार यह है कि हमें परदेशियों की सेवा करके उन पर प्रेम प्रकट करना है, परंतु हमें सावधान रहना है कि हम उन्हें परखें। हमें ध्यान देना है कि हम अपने आसपास के लोगों की सहायता करें। हमें उनसे प्रेम निभाना है और इस प्रकार हमें कुछ बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे, सब नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हैं? क्या हम उनकी सहायता करते हैं? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको भी जांचने की आवश्यकता है। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा वर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। मेरे मित्रों, पौलुस तो स्वयं जंजीरों से जकड़ा हुआ था, अतः वह अनुभव के साथ कहता है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। कहने का अर्थ है कि आवश्यकता में पड़े और परेशान लोगों की सुधि लो। कलिसिया एक देह है और जब एक सदस्य को कष्ट होता है तब सबको कष्ट होता है। कुछ समय पहले मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया था, तब मुझे इस सच्चाई का अनुभव हुआ। एक महिला का पत्र पढ़कर मुझे रोना आ गया था। उसने लिखा, मैं किसी काम के योग्य नहीं, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपकी बीमारी मुझे दे दे और आप अपनी सेवा फिर से कर पाएं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा स्वभाव हर एक कलीसिया और हर एक विश्वासी समूह में नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे लोग अब भी जीवित हैं। हम अपने छोटे से समूह और भोज में होने वाले मसीही व्यवहार की बहुत डींग मारते हैं, परंतु एक अभागा भक्त जो कहीं रोगशैया पर पड़ा है और उससे कोई भी मिलने के लिए नहीं जाता, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। आप में से अनेकों की सेवा रोगियों और अकेलों से भेंट करने की है। यही भाईचारे का प्रेम है। जी हाँ, जिसकी लेखक यहाँ पर चर्चा कर रहा है, भाईचारे का प्रेम कलीसिया या हमारे सहभागिता में ही नहीं होना चाहिए, परंतु उन भाइयों के साथ भी होना चाहिए जो हमसे दूर में हैं। आज एक प्रचलित उक्ति है, देहिक प्रेम, परंतु यह तो धर्मशास्त्र में पहले से ही है। इसे आप किसी आवश्यकता ग्रस्त की सेवा में व्यवहारिक बनाते हैं। आज इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि लोग इसे साधारण रूप में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। यहाँ लेखक वैराग्य के विपक्ष में कह रहा है। मेरे मित्रों, यदि आपको जीवन साथी के लिए अच्छा विश्वासी लड़का या लड़की मिले तो विवाह कर लें। यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो वह आपको जीवन साथी के लिए उचित व्यक्ति तक ले जाएगा। यौन संबंध विवाह की सीमा में ही हो, परमेश्वर ने मनुष्य के कल्याण हेतु विवाह की स्थापना की है। यदि आप विवाह के बिना साथ रहना चाहते हैं तो आप हानि उठाएंगे। परिवार समाज का और कलीसिया का केंद्र है, क्योंकि परिवार में सिर्फ पति और पत्नी होते हैं और उन्हीं के बीच का संबंध स्वीकार योग्य है। लिखा है, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। मैंने सुना था कि लंदन में यौन शिक्षा में कमी की जा रही थी। क्योंकि उनके सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इसके कारण स्कूलों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई थी और यौन रोग की महामारी का प्रकोप भी अधिक हो गया था। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जी हाँ, यह अत्यधिक कठोर और गंभीर बात है। मैंने वर्षों की सेवा में देखा है कि अनेकों ने व्यभिचार करके साथ बचने का प्रयास किया है, परंतु मैंने एक को भी बचते हुए नहीं देखा है। उनका पाप शायद मनुष्यों से छिपा हो, परंतु परमेश्वर के दंड से वे बच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे जवान मित्रों, यदि आप किसी प्रकार के पापमय जीवन में जी रहे हैं, तो आज आपके लिए अवसर है कि आप परमेश्वर से भय खाएं, उसके इस गंभीर चेतावनी को आप समझ लें। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। लिखा है लोभ रहित, अर्थात पैसे के लालची। पैसे को परमेश्वर से बड़ा आप ना बनाएं। बहुत सारे लोग आज करोड़पति बनना चाहते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, परंतु आपको वह न त्यागेगा और न ही वह आपको अकेला छोड़ेगा। क्या यह अद्भुत वचन नहीं है? आप कुछ भी हो, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ हैं, तो आप वहां हैं जहां परमेश्वर आपको न तो त्यागेगा और न ही आपको अकेला छोड़ेगा। मेरे विचार में मेरे मित्र मुझे त्याग देंगे, मेरे संबंधी मुझे त्याग देंगे, परंतु प्रभु यीशु मेरा त्याग कभी नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने उसे अपनी ओर किया हुआ है और आप चाहेंगे कि प्रभु यीशु आपकी ओर ही बना रहे। जी हां, संसार हमें धोखा दे सकता है, हमें छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं तोड़ता। वह हमें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। मेरे प्रियो, आप किसके पास आना चाहेंगे, संसार के पास या परमेश्वर के पास? इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यरूशलेम, यहूदा और सामरिया के इब्रानी विश्वासी आने वाले कुछ ही वर्षों में सताए जाएंगे, अतः उन्हें स्मरण रखना है कि परमेश्वर उन्हें त्यागेगा नहीं। जी हां, वे कष्टों के उपरांत भी कहेंगे, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के निकटता में हैं, तो आप भी ऐसा ही कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। क्या आज आप ऐसा कहने के लिए सक्षम हैं? यदि नहीं, तो आज भी आपके पास मौका है कि आप प्रभु के पास आएं, तब आप भी ऐसा कहने पाएंगे। वियतनाम के युद्ध के बाद कई अमेरिकी युद्ध बंदियों ने गवाही दी कि प्रभु यीशु ने उनकी रक्षा की और सुधी ली। उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था, प्रभु यीशु उनके साथ था और उनकी सुधी ली। मैं तो नेताओं की अपेक्षा प्रभु यीशु की बात सुनना चाहता हूं, क्योंकि वही मेरा सच्चा सहायक है। वह ना तो मुझे त्यागेगा और ना ही मुझे अकेला छोड़ेगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी उसी की शरण में आने की आवश्यकता है। हम आगे देखते हैं विश्वासी का सामाजिक जीवन। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कुछ पादरीगण कहते हैं कि उनकी कलीसिया को इस पद पर चलना चाहिए, परंतु यहाँ लेखक आत्मिक अगुओं की बात कर रहा है। आवश्यक है कि वे मनुष्य को प्रभु यीशु के पास लाएं। यदि कोई प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है और मनुष्यों को प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाने का प्रयास करता है, तो आपको ऐसे मनुष्य के साथ वफादारी निभाना है। परंतु यदि आप इसलिए वफादारी निभाते हैं कि वह कलीसिया का पादरी है, तो लेखक का विचार ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और इस बात को जान लें कि प्रभु मेरा और आपका सहायक है और वह न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, और यह भी जान लें कि वह हमारा न्याय करेगा क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में जांचे और देखें कि मेरा और आपका जीवन किस प्रकार का है। यदि हम परमेश्वर से दूर हैं, उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो आज हमारे पास में मौका है कि हम उसके निकटता में आ जाएं और उससे कहें कि प्रभु, मैं आपके निकटता में आना चाहता हूँ, अपने प्रियों से मैं प्रेम करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें, और निश्चय जाने कि वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें: कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए: कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ऐसा जुनून तो दे दे, रूल कुदूस से भर दे, ऐसा जुनून तो दे दे, रूल कुदूस से भर दे, अपने लिए यीशु कामिल तो कर ले, अपने ही जैसा प्यार सिखा दे, मैं तेरी उल्फत का प्यासा, मेरे खुदाया, मेरे यीशु तुझसा नहीं देखा कभी, सारा जिंदगी जी सकूं।
प्यासा हूँ मेरे खुदाया।